जयधवला पुस्तक चौधरी लेक्चर नंबर 5
ओम नमः
सिद्धे
दोषे उवसन्तक साय वीयरायन्ते उवसामये पणम्यूं कसाय उवसामणम् ओच्छम्।
यह श्री भीमसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नीसूत ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है यति ऋषभ आचार्य, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चौदहवीं पुस्तक में अभी चारित्र मोहिनी उपशमना का अर्थाधिकार अपना चल रहा है जो तेरहवीं पुस्तक से चल रहा था। यहाँ हम आए हैं पृष्ठ संख्या 21 पर। यहाँ पहले उपशम कितने प्रकृतियों का होता है और कितने भाग प्रमाण होता है उसकी चर्चा करने के बाद संक्रम और उदीर्णा कितनी कितनी होती है उसकी चर्चा चली थी। तो उसमें संक्रम की बात उन्होंने बताई है, उसमें प्रदेश संक्रम, स्थिति संक्रम और अनुभाग संक्रम की बात आई। प्रदेश संक्रम में हमने देखा था जब तक अन्य प्रकृतियों के इसमें गुण संक्रमण रूप से माल आता रहता है तब इसका अपना भी विशेष अधिक रूप से होता है, और जब वो बंद हो जाता है तो इसका अपना गुण श्रेणी रूप से दिया भी जाता है, उपशम भी होता रहता है और संक्रम भी होता है, वो विशेषहीन रूप से चलता है। उसका जो नवक बंद है उसमें चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित रूप से प्रदेश संक्रम चलता है। अब स्थिति संक्रम की बात, तो स्थिति संक्रम में क्या होता है, जो अनुदय रूप है तो उसके द्वितीय स्थिति में जितने निषेक है उतने ही है तो उसमें तो अवस्थित है, परंतु जो उदय रूप प्रकृति है उसका एक एक निषेक गल जाता है तो उसका स्थिति संक्रम एक एक से कम होता चला जाता है, एक एक समय
संख्या
से तो उसकी हानि होती चली जाएगी। परंतु जब पुराने कर्मों का स्थिति संक्रम के बाद जब नवक बंद का सवाल आता है तो एक साथ एक झटके में असंख्यात गुना हानि वाले वहां बात बन जाती है, क्योंकि पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण थे और अभी 16 वर्ष के जो कुछ पुरुष वेद में यथा योग्य जिस कर्म की जो बात चल रही है उसमें वो घटित है। उसके बाद अनुभाग संक्रम की बात आई, तो अनुभाग संक्रम किसी भी निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक सभी स्पर्धक पाए जाते हैं। यानी आप कहेंगे वो उदयावली में प्रवेश किए उसका नहीं होता, उसका नहीं होता तो क्या है, ऊपर तो हो ही रहा है ना, तो अनुभाग में वो कहाँ का निषेक है ऐसा कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सभी निषेकों में सभी स्पर्धक और सभी वर्गणाएं पड़ी हैं, इसलिए सभी स्पर्धकों में से और वर्गणाओं में से संक्रम होता है ऐसा हम कहें तो उसको अवस्थित संक्रम अनुभाग की अपेक्षा भी बताएंगे। उसके बाद यहाँ हम 21 पेज पर आए हैं। तो यहाँ ये बात पूछी गई थी कि पहली जो उदय वाली प्रकृतियां हैं उसकी प्रथम स्थिति गल जाती है एक एक करके, तो उसमें भी आप अवस्थित अनुभाग संक्रम कैसे कहते हो, उसका वही उत्तर है कि भले निषेक पहले स्थिति के हो या द्वितीय स्थिति के हो, वर्गणाओं की अपेक्षा उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, प्रत्येक निषेक में सभी वर्गणाएं पाई जाती है। वर्गणा के लिए यहाँ सदृश धन वाले ऐसा कुछ शब्द आया, क्योंकि वर्गणा में अनेक परमाणु है और प्रत्येक परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद समान है, तभी तो उसको हम उस ग्रुप को हम वर्गणा कहते हैं। अब यहाँ हम 21 पेज पर नीचे के संघ का समाधान पढ़ेंगे, ऊपर के दो हो गए अपने। अनुभाग तांडक का घात करते समय अनंत गुणहानि क्यों नहीं होती, उसका समाधान, क्योंकि अनुभाग कांडल जब कहते तो ऊपर के कितने अनंत स्पर्धकों का घात हो जाता है, अनंत वे भाग प्रमाण रह जाते हैं, तो कहते तो वहां तो घात कहो ना, उसका समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंतरकरण करने के बाद ये उपशम की संक्रमण की अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अंतरकरण के बाद की चर्चा चल रही है, और वहां पर मोहनीय कर्म का स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं पाया जाता, वो रुका हुआ है, अभी नहीं होता। अपूर्वकरण में और अनिवृत्तिकरण के शुरुआत में तो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते थे, जब से अंतर किया है अब वो स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात मोहनीय में नहीं होगे, अन्य प्रकृति ज्ञान आवरण आदि में होगे तो होगे, वह उसमें तो बाकी तो चले, उसमें तो कोई अंतर पड़ता नहीं। इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुष वेद के नवक बंध का, नवक बंध ने अपना अपना उदय मिटने पर बाद में उसका जो संक्रमण होगा उपशम होगा उसका अनुभाग संक्रम प्रत्येक समय में अनंत गुणहीन क्रम से प्रवृत्त होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उसमें तो अनंत गुणहीन प्रमाण हो जाएगा। विशेषार्थ जघन्य स्पर्धक से लेकर जितने अनुभाग स्पर्धक है, यानी टोटल अनुभाग किसमें नापा जाता है, अभी हम स्पर्धकों में नापते हैं, एक एक स्पर्धक में और विशेष करना है तो उसकी वर्गणाएं कहेंगे, तो जघन्य स्पर्धक से लेकर जितने अनुभाग स्पर्धक है वो कितने हैं, तो वे अभव्यों से अनंत गुणे या सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण होते हैं, उनमें सदृश धन वालों का प्रमाण भी उतना ही है, सदृश धन वालों का यानी वर्गणाओं का प्रमाण भी उतना ही है। एक स्पर्धक में इतनी अनंत वर्गणा होती है। और यहाँ इनके असंख्यात विभाग का कौन से जो वर्गणा है उसमें जो प्रदेश परमाणु है हर एक में से असंख्यात विभाग का प्रत्येक समय में संक्रम होता है, क्योंकि उसका जो भागाहार का प्रमाण जो है कुछ विशेष असंख्यात में होता है, उतने प्रत्येक समय में प्रदेश संक्रमित हो गए, इसलिए ये वर्गणाओं के प्रदेश की बात, इसलिए प्रकृत में परंतु वहाँ कितने प्रदेश संक्रमित होते हैं अपना विषय नहीं, अनुभाग की बात चल रही, सभी वर्गणाओं में से कुछ कुछ पर प्रदेश संक्रमित हो रहे हैं, यानी अनुभाग संक्रम जो है सभी में से हो रहा है, तो उसको अवस्थित का, इसलिए प्रकृत में अवस्थित संक्रम बन जाता है, तथा जो सोदय प्रकृतियां हैं यानी उदय वाली प्रकृतियां हैं उनमें भी प्रथम स्थिति के स्पर्धक द्वितीय स्थिति के स्पर्धकों के साथ समान धन वाले होते हैं, स्पर्धकों में कोई वेरिएशन नहीं है, जितने स्पर्धक प्रथम स्थिति के निषेकों में पाए जाते हैं वे सबके सब स्पर्धक द्वितीय स्थिति के निषेकों में भी पाए जाए, इसलिए उनमें भी अवस्थित संक्रम घटित हो जाता है। ये बात ख्याल में आई ना, हर एक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट सभी अनुभाग वाले
प्रथम स्थिति में
स्पर्धक पाए जाएंगे, वो पहले स्थिति में भले वो गल जावे उससे कुछ लेना देना नहीं, दूसरे स्थिति में तो पड़े इतने अनुभाग तो सभी अनुभागों में से वहां तो संक्रमण चलेगा, तथा अंतरकरण क्रिया के बाद मोहनीय कर्म में कांडक घात क्रिया होती नहीं, ना ही स्थिति कांडक घात होता है ना ही अनुभाग कांडक घात होता है। अनुभाग कांडक घात किसको कहना, बहुत सारे स्पर्धकों का एक छोटे अंतर्मुहूर्त में घात होकर वे परमाणु कम अनुभाग वाले हो जाना, तो उसको कहेंगे यानी वो स्पर्धकों का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, यहाँ स्पर्धक अपने जगह स्थित है, उनमें से थोड़े परमाणु नीचे के स्पर्धक जैसे हो जाते हैं, उसका संक्रमण अनुभाग का संक्रमण होता है, यह तो पर प्रकृति रूप की बात चल रही है। तो यह कहते कि यहाँ कांडक घात नहीं होता, इसलिए इस क्रिया के निमित्त से यानी अनुभाग कांडक घात के कारण उसके निमित्त से अनुभाग की प्रति समय होने वाली अनंत गुणहानि भी यहाँ संभव नहीं है, यानी अनंत गुना हीन रूप से वो होते चले जाते हैं और एक अंतर्मूर्त में उन अनुभागों का स्पर्धकों का पूरा घात किया जाता है। इतना अवश्य है कि पुरुष वेद और क्रोधादि तीन संज्वलन प्रकृतियों के नवक बंद के अनुभाग में प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से संक्रम बन जाता है। ये नवक बंद में ही होता है, अन्यथा नहीं होता। लोभ में नवक बंद नहीं होता,
नहीं क्रोध में संकर मान, लोभ में तो संक्रमण रुक गया है ना,
लोभ का तो संक्रमण ही नहीं है और उसमें लोभ में नवक बंद तो हम बादर लोभ की अपेक्षा कह सकते हैं, परंतु उसका संक्रमण तो है ही नहीं। संक्रमण होने वाली प्रकृतियां पुरुष वेद और तीन संज्वलन। यहाँ अनुभाग संक्रम में परक प्रकृति रूप होते हुए अनुभाग, क्योंकि क्योंकि यहाँ संक्रमण पर प्रकृति रूप हो रहा है ना, यदि स्वरूप से ही होना तो लोभ में भी घटित होना चाहिए था। उतना ही अनुभाग रहता है ऐसा कहना है आपको, हाँ, यानी उसका अनुभाग में से भी संक्रमण होगा। जो परमाणु जो पर रूप होते हैं
उसका अनुभाग तो कम हो जाएगा,
स्थिति का संक्रमण, यानी कितनी स्थितियों में से परमाणु चले जाते हैं, वैसे ही अनुभाग में लेना, उतने ही अनुभाग वाले स्पर्धक सारे के सारे वो जो पुरुष वेद है वो क्रोध रूप हो गए, क्रोध है वो मान रूप हो गए, उसमें भी उसका अपना विशिष्ट अनुभाग रहेगा। हाँ, यानी जो परमाणु संक्रमित होते हैं उसमें प्रदेश स्थिति अनुभाग सब कुछ घटित हो गए।
पर अनुभाग कांडकघात,
कांडकघात यहाँ नहीं है,
नहीं है, और वो हम लोग स्व प्रकृति में देखते हैं,
स्व प्रकृति में देखते हैं।
तो यहाँ पे जो संक्रमण
अनुभाग संक्रम केवल इतना ही बताएंगे तो स्व प्रकृति में हो सकता है, यदि वैसा है तो लोभ में भी कहना चाहिए था, लोभ में क्यों नहीं लिया?
हाँ, क्योंकि लोभ में तो पुष्टिकरण का भी कार्य चल रहा है तो वहाँ पे अनंत गुण
उसको संक्रमण नहीं कहा है। तो हम तो अभी तो पर प्रकृति रूप जो कुछ टर्न हो रहा है वो तो अनुभाग की अपेक्षा भी सभी स्पर्धकों में से संक्रमण हो रहा है इतना देना, यानी सभी वर्गणाओं के परमाणु संक्रमित हो रहे, इतनी बात यहाँ लेना। अनुभाग घट रहा है कि बढ़ रहा है ये यहाँ का विषय नहीं है, सभी वर्गणाओं में से परमाणु पर प्रकृति रूप हो रहे हैं।
पर जब अनुभाग की बात आएगी तो अनुभाग कितना संक्रमित होता है,
तो उसका जो अनुभाग का संक्रमण होना, अभी तो उसके क्रोध का अनुभाग कहेंगे, फिर उसको मान का अनुभाग कहेंगे, यथा योग्य जो कुछ बन जाए। वो नवक बंद में अनंत गुणहीन क्रम से जो हम भी कोई भी कर्म बांधते हैं तो अनंत गुणहीन होकर ही उदय में आता है, कोई भी जिस रूप से बंधा है उस रूप से उदय में आता ही नहीं।
यहाँ पे अनुभव का संक्रमण परूप होना उसका नहीं, उसकी अपेक्षा कर ली है,
सभी स्पर्धकों में से वो परमाणु संक्रमित हो रहे, हाँ, इतना ही लेना।
हाँ, वो अनुभाग वाले परमाणु, हाँ, परूप हो जाते,
परूप हो जाते, वो परूप से जिसका अनुभाग जितना बनेगा,
हाँ, वो
उसका उतना लेवल पे रहे के थोड़ा ही, उसके कुछ लेना देना नहीं, सभी स्पर्धकों में से परमाणु संक्रमित हो रहे इतना लेना, अभी तो इतना ही
अनुभाग वाले परमाणु संक्रमित हो रहे।
हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हीन वाले हो रहे हैं कि अधिक वाले हो रहे हैं, सभी वर्गणाओं में से
सभी
असंख्यात विभाग प्रमाण परमाणु संक्रमित हो रहे। अब उदीर्णा की मार्गणा करते हैं, पृष्ठ संख्या 22 पर चल रही है अपना विषय। अभी तक हमने उपशम की बात देखी और संक्रमण की देखी, अब उदीर्णा की चल रही है। वह जैसे प्रदेश पुंज की अपेक्षा तो सभी वेदे जाने वाले कर्मों की उदीर्णा असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से प्रवृत्त होती है, क्योंकि प्रत्येक समय में विशुद्धि की अनंत गुणे क्रम से वृद्धि देखी जाती है। जहाँ वृद्धि क्रम से बढ़ती हुई है वहाँ अपकर्षित होकर उदयावली में दिए जाने वाले परमाणुओं की संख्या असंख्यात गुणी होती चली जाती और वो किस रूप से रचना होती तो गुण श्रेणी रूप से नीचे के निषेक में सबसे कम फिर असंख्यात गुण असंख्यात गुण असंख्यात गुण जो अंतर्मूल प्रमाण वहाँ गुण श्रेणी है तब तक ये ऐसी रचना होती। तो ये किसमें तो जो उदय वाली है उसमें, परंतु स्थिति उदीर्णा। अब यहाँ तो कर्मों की उदीर्णा ये जनरल कथन था तो ऊपर के निषेकों में से नीचे उदयावली में दिए जाते हैं प्रदेश पुंज की अपेक्षा असंख्यात गुणा सिद्ध हुआ। स्थिति की उदीर्णा यानी कितने स्थितियों में से कितने निषेकों में से उदीर्णा होती है तो उदयावली के ऊपर के सभी निषेकों में से उदीर्णा होती है। उदयावली के बाहर के निषेकों का कुछ प्रमाण में द्रव्य यानी परमाणु उदयावली में देने को उदीर्णा कही तो कहां से दिए जाएंगे उदयावली के ऊपर से। तो कहते परंतु स्थिति उदीर्णा आवली प्रत्यावली के अवस्थित रहने तक विशेष हीन होती जाती क्योंकि जो द्वितीय स्थिति में से जो कुछ नीचे आ रहे हैं और एक एक निषेक गल रहा है एक एक निषेक उदयावली में प्रवेश कर रहा है तो ऊपर के स्थितियां कम होती है जितने में से उदीर्णा होगी। तो क्या कहा कि स्थिति उदीर्णा विशेष हीन होती जाती है। विशेष हीन क्यों? एक एक स्थिति गल रही है ना। यहाँ परमाणु का परमाणु कितने उदीर्ण होते रहे उसकी बात नहीं, वो तो असंख्यात गुणा क्रम से उदीर्ण होते। कितने निषेकों में से नीचे द्रव्य आ रहा है तो कहते कि जितने मान लेते ऊपर 100,000 निषेक थे, अब उसमें से एक एक निषेक नीचे के एक एक निषेक गल जाएगा तो ऊपर की एक एक समय घटेगी स्थिति। पुनः निषेक प्रथम स्थिति में से गल रहे हैं। हाँ तो आपका प्रश्न क्या है?
अंतर हो चुका है।
हाँ
नहीं द्वितीय स्थिति भी एक एक समय इसमें नीचे आ रही है ना। नहीं नहीं ऊपर वाली स्थिति है
स्थिति
समय
समय एक एक घटेगा कितने स्थितियों में से निषेकों में से उदीर्ण होते उदय रूप में कम हो रहे
एक एक समय को
जैसे प्रथम स्थिति में पहले 100 थे और ऊपर 1,000 थे तो नीचे 100 में तो 99, 98, 97, 96, 95 तो 95 हो जाएंगे तो ऊपर की स्थिति से 1,000 के 1,000 ही रहेंगे।
नहीं पर नीचे एक एक कम हो रहे हैं ना
समय की
हाँ तो नीचे विशेष हीन हो विशेष होने का क्या उदीर्णा कितने निषेक में से हो रही है तो नीचे से एक एक उदयावली में जाएंगे तो एक एक हीन रूप से हो रहा है
नीचे का माल आ
रहा है। उदीर्णा तो किसको कहेंगे?
देखो
माल का आ रहा है
माल आए नहीं आए उसकी बात नहीं है यहाँ ये द्वितीय स्थिति है उसमें से परमाणु ठीक है कोई बात नहीं यहाँ प्रथम स्थिति बनी प्रथम स्थिति है अभी इसको हम कहेंगे ये आवली और ये प्रत्यावली तो कितने निषेकों में से उदीर्ण हो रही है यहाँ तो और यहाँ से भी हो रही है। प्रथम स्थिति जो अंतर्मूल प्रमाण थी द्वितीय स्थिति जो है चाहे आप ले लो ऊपर ये प्रथम स्थिति अंतर्मूल प्रमाण थी ना ये गुण श्रेणी यहाँ बनी थी अभी इसमें से नीचे से एक एक गल रहा है तो यहाँ दो आवली सॉरी एक आवली छोड़कर ऊपर का माल यहाँ पर भी उदीरित हो रहा है और ऊपर से भी उदीरित हो रहा है तो यहाँ का एक एक निषेक कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो टोटल उदीरणा जिसमें से हो रही वो तो कम हो रहा है ना। द्वितीय स्थिति आप उतनी रखो प्रथम स्थिति घट रही
ऊपर में वाई है,
वाई को छोड़ी दे दो,
एक्स माइनस वन प्लस वाई तो हमेशा कहते हैं, वो तो एक्स माइनस वन एक्स।
आप ये समझने की कोशिश करो, एक आवली छोड़ो, यहाँ अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति है और ऊपर जितनी हो अंत कोड़ा कोड़ी ले लो, तो अंतर्मूर्त तो घटेगी कि नहीं घटेगी? अंतर्मूर्त घटकर आवली के ऊपर एक समय बाकी रहेगा, तब तक नीचे की उदीर्णा चलेगी। पहले उदीर्णा कहाँ से हो रही थी? द्वितीय स्थिति में से प्लस प्रथम स्थिति में से, यानी अभी सुनो, असंख्यात निषेकों में से उदीर्णा हो रही थी और उसमें प्रथम स्थिति के निषेक एक एक करके घट रहे थे। अभी हम ये नीचे नीचे आ रहे हैं ऐसा समझो, क्योंकि वर्तमान की ओर दिखाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है ये आवली और प्रत्यावली इतने बाकी रहे, तब तक क्या इसी में से इसके तो निषेक घट रहे, तो टोटल उदीर्णा किसमें से हो रही? द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति में से उदीर्णा हो रही थी। आवली के ऊपर प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है, वो भी निषेक कम हो रहे हैं और द्वितीय स्थिति में से सब में से आ रही थी। आगाल अभी रुका नहीं है, दो आवली बाकी रही तब रुकेगा, और जब रुकेगा तब यहाँ से होने वाली उदीर्णा कट हो गई, अब यहाँ से होगी तो मात्र एक आवली में से होगी। पहले अंत कोड़ा कोड़ी सागर में से हो रही थी, अब आवली में से होगी, तो असंख्यात गुणाहीन हो गई स्थिति उदीर्णा।
असंख्यात
आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर असंख्यात गुणाहीन हो जाए, उसके बाद आवली का एक एक निषेक घटेगा, तो वहाँ फिर विशेषण विशेषण वहाँ चलेगा। देखो यहाँ फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सूरज। प्रदेश कुंज की अपेक्षा तो सभी वेदे जाने वाले कर्मों की उदीर्णा, उदीर्णा उन्हीं की होती जिसका उदय है, इसलिए वेदे जाने वाले कर्म कहे। असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से प्रवृत्त होती है, असंख्यात गुणा श्रेणी प्रति समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा उसके उसकी उदीर्णा होती रहती है, क्योंकि नीचे ही माल इतना आया है गुण श्रेणी रूप से, उसमें भी उदीर्णा हो रही है, द्वितीय स्थिति में से भी नीचे आ रहे हैं, तो वो प्रति समय असंख्यात गुना क्यों? परिणामों की विशुद्धि के कारण। परंतु स्थिति उदीर्णा यानी जितने निषेकों में से उदीर्णा हो रही है, आवली प्रत्यावली के अवस्थित रहने तक विशेषहीन होती जाती है, क्योंकि प्रथम स्थिति तो घट ही रहे ना, द्वितीय स्थिति को हम कायम रखते हैं, प्रथम स्थिति तो घट रही है। तो कहते हैं कि आवली प्रत्यावली क्यों? तभी आगाल भी रुक जाता है, तो ऊपर से आने वाला पूरा माल उदीर्ण होने वाला रुक गया है। अभी कितने में से? आवली में से केवल उदीर्ण होगी, प्रत्यावली में से नीचे उदयावली में आएगी। तो कहते पुनः स्थिति उदीर्ण असंख्यात गुणीहीन होती है, क्योंकि आगाल प्रत्यागाल की विच्छित्ति होने के कारण स्थिति उदीर्ण असंख्यात गुणीहीन देखी जाती है, यानी क्योंकि अभी द्वितीय स्थिति में से उदीर्णा रुक गई, द्वितीय स्थिति में से उदीर्णा नहीं होगी।
आगाल प्रत्यागाल जब नाम इसलिए बोल रहे हैं तो आगाल ही बोलना चाहिए,
आगाल ही बोलना चाहिए,
जैसे उत्कर्षण उत्कर्षण।
हाँ
उत्कर्षण
वो उसकी बात हमने उस दिन की थी, यहाँ बंधन नहीं है तो प्रत्यागाल कैसे कहेंगे? प्रत्याग्याल किसको कहेंगे? ऊपर जाने को कहेंगे। हाँ तो प्रत्याग्याल किसकी होगी? अभी उदय है और जिसका बंद है उसी में प्रत्याग्याल भी था, प्रत्याग्याल ने प्रथम स्थिति में से ऊपर चले जाना, जिसका उदय भी पुरुष वेद का उदय है, बंद भी है
तो प्रत्याग्याल
तो बंद है, तो नए बंधने वाले के साथ वो नीचे के कुछ परमाणु ऊपर भी चले जाते, उसको प्रत्याग्याल का, तो तब तक है जिसका बंधन है उसका नहीं प्रत्याग्याल का। ये हमने नपुंसक वेद के उपशम ने उसमें बात उठाई थी कि वहां तो प्रत्याग्याल घटित नहीं हो रहा था, क्योंकि नपुंसक वेद का तो बंध है ही नहीं,
नहीं। है
नपुंसक वेद के उपशमने के काल की बात कर रही थी, वो तो द्वितीय स्थिति में ही है, वो सारा उष्मित हो रहा है।
यह पुरुष व्यक्ति करेगा उसके भी दुआवली काल देने से प्रत्यागल भी रुक जाएगा।
हाँ, उसका भी प्रत्यागल रुक जाता है। ये तो नियम है, दो आवली काल शेष रहता है तो अंतर के ऊपर और नीचे जाना आना बंद हो जाता है। ये तो हमने प्रथम उपशम सम्यक्त के काल में भी देखा था, दर्शन मुनि के बारे में। उदीर्णा यानी अपकर्षण वाला जो द्रव्य है, टोटल अपकर्षित जो द्रव्य है। आपकी स्थिति उदीर्णा की बात कर रहे हैं क्या? स्थिति उदीर्णा कितने निषेकों में से उदीर्णा होती है? उदयावली के ऊपर के सभी निषेकों में से उदीर्णा विशेषण, क्योंकि एक एक घट रहा है, असंख्यातवा भाग कम हो रहा है, जितनी स्थिति है उसमें से एक एक समय का निषेक गल रहा है। प्रथम स्थिति एक एक समय से घट रही है तो उतने स्थितियों में से निषेक, मान लेते एक 100 निषेकों में से उदीर्णा हो रही है, अभी 99, फिर 98, फिर 97, उसको विशेषण कहेंगे। प्रति समय एक एक का ही घट रहा है, एकदम ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तब असंख्यात गुणाहीन कब कहेंगे? जब आगाल प्रत्यागाल रुकेगा। पहले तो सभी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेकों में से भी उदीर्णा हो रही थी, अब द्वितीय स्थिति में से कुछ नीचे नहीं आ सकता, मात्र प्रथम निषेक प्रथम स्थिति में दो आवली बाकी है, तो ऊपर के आवली का द्रव्य नीचे के आवली में आ जाएगा। तो उदीर्णा कितनी घट गई? अंत कोड़ा कोड़ी में से एकदम आवली प्रमाण हो गई। पहले अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक में से उदीर्णा हो रही थी, अब प्रत्यावली में से मात्र उदीर्णा होगी। तो वहां असंख्यात गुणा घट हो गए, एकदम निषेकों की संख्या में एकदम ड्रॉप आ गया, उसको असंख्यात गुणाहीन कहेंगे। नहीं तो पहले तो असंख्यात भाग कम हो रहे थे, एक एक निषेक कम हो रहा था, असंख्यात निषेकों में से उदीर्णा हो रही थी। हाँ, असंख्यात भाग तो विशेषहीन है,
विशेषहीन क्योंकि एक एक
एक एक समय एक एक निषेक वो असंख्यात गुणाहीन कब हुई?
आगाल प्रत्यागाल,
जब आगाल प्रत्यागाल रुक गया तब, उसके बाद फिर विशेषहीन, पुनः प्रत्यावली प्रमाण काल तक दो आवली बाकी थी। अब जो आवली काल बीतने तक क्या होगा? ऊपर का एक एक निषेक नीचे आएगा। अधस्थिति गलना के द्वारा विशेषहीन होती है। पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी में से एक एक समय घटता जाता था, अभी आवली में से एक एक समय घटेगा, फिर भी उसको असंख्यात भाग ही कहेंगे, विशेषहीन कहेंगे। ये बात ख्याल में आई मंजू? नहीं आई? यहाँ स्थिति उदीर्णा की बात चल रही है। प्रदेश उदीर्णा का प्रमाण कैसे निकालते हैं? पूरा टोटल द्रव्य सत्ता में पड़ा हुआ डिवाइडेड बाय उसका अपकर्षण भागा, जो कोई पूरा अपकर्षित होगा वो तो ऊपर भी दिया जाता है, उदयावली में भी दिया जाता है। यहाँ जितना उदयावली के अंदर प्रवेश करेगा उसी को उदीर्णा द्रव्य कहेंगे। सामान्य अपकर्षण द्रव्य में से थोड़ा एक भाग उदयावली में दिया जाता है, तो उसकी चर्चा, वो कितना है? तो प्रति समय असंख्यात गुना होता है। ये तो प्रदेश उदीर्णा की बात हुई। अब स्थिति उदीर्णा, कितने निषेक है उसमें से उदीर्णा यानी उदयावली में आते हैं? तो उदयावली को छोड़ो, ऊपर प्रथम स्थिति के निषेक और द्वितीय स्थिति के निषेक सब में से थोड़े थोड़ा द्रव्य उदीर्णा होकर उदयावली में प्रवेश करेगा। अब ये प्रथम स्थिति तो हर समय घटती चली जाती है, तो विशेषहीन होता चला जाता है। बाद में क्या, यहाँ जब दो आवली बाकी रहती है तो ऊपर से जो सभी निषेकों में से द्रव्य उदीरित होता था वो रुक गया, उसको कहते थे आगाल। अंतर को जंप कर लांग कर नीचे आना उसको आगाल कहते थे, और इसमें से कुछ उदय रूप जो बंद रूप प्रकृतियों ऊपर जाते जाते थे उसको प्रत्यागाल कहते। वो अभी रुक गया है, यानी ऊपर से होने वाली उदीर्णा अभी नहीं है। तो इतने सारे स्थितियों में से निषेकों में से उदीर्णा होती थी, अब ये रुक कर मात्र एक आवली प्रमाण निषेक में से नीचे उदीर्णा होगी। तो पहले इतने अंत कोड़ा कोड़ी सागर थे, अब आवली प्रमाण हो गई तो कितना हुआ, असंख्यात गुणाहीन हो गया। स्थिति की उदीर्णा, कितने स्थितियों में से उसको निषेकों की संख्या को लेना है, वो एकदम से ड्रॉप हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक एक निषेक उदयावली में एंटर होगा। मान लेते यहाँ 16 निषेक है, नीचे भी उदयावली में 16 है, तो 16 के 15 हुए, 15 के 14 हुए, इस तरह से एक 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 नीचे आएगा। फिर क्या, नीचे 16 उदयावली और ऊपर एक ही निषेक बाकी, वो जघन्य स्थिति उदीर्णा तब कहेगा, एक ही निषेक में से उदीर्णा हो रही है। तो ये विशेषहीन क्रम से घटित हो रहा है, ख्याल में आई इतनी बात। ये स्थिति उदीर्णा की बात है। अब अनुभाग उदीर्णा की बात है। अनुभाग उदीर्णा तो प्रत्येक समय में अनंत गुणहीन ही होती है, उदीर्णा की बात। क्योंकि मोहनीय अप्रशस्त प्रकृति है और विशुद्धि की वृद्धि होने से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन होकर उदीरित होता है। इसलिए अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन ही होती है, यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार इन्हें उदय में आते आते अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है। स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक बंध और उदय की मार्गणा यहाँ पर जानकर करना चाहिए। उन्होंने उपशम की बात की, संक्रमण की बात की, उदीर्णा की बात की, अब कहते हैं बंध यानी स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की भी यहाँ बात सोचनी चाहिए। उदय में भी स्थिति, कितने स्थिति का उदय, कितने अनुभाग का उदय और कितने प्रदेश का उदय, ये मार्गणा यहाँ पर जानकर करना चाहिए। यह सब मार्गणा सुगम है, इसलिए सूत्रकार ने विस्तार नहीं किया। ये स्वयं वीरसेन स्वामी कह रहे
हैं।
यानी बंद कितना है, तो हर एक पोजीशन पर उन्होंने बंद बताया है। हाँ, तो वो भी घटता चला जा रहा है ना। प्रदेश बंद अनुभाग की अपेक्षा कम अधिक होगा, योग के हिसाब से वो कम अधिक होता है, ये वो घटता जाता है ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। आज जो कुछ
है
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने अभी देखा ना नवक बंध में चार प्रकार की वृद्धि हानि हो सकती है, अवस्थित भी हो सकता है। तो यथा योग्य नए बंध में तो ऐसा ही
ये बंध की अपेक्षा भी अनुभाग प्रसिद्ध में अनंत गुणा ही नहीं बंधेगा।
हाँ, नया अनुभाग जो बंधने वाला
अनंत गुणा
हीन ही हो,
क्योंकि विशुद्धि बढ़ती जा रही है।
और उदय में भी ऐसा ही लेना, स्थिति एक उदय है, परंतु उदय में उन्होंने ऐसे लिए कि उदीर्णा कितने में से होती, उतने स्थितियों का वहाँ उदय में लिया था उन्होंने। हाँ, एक बार
कितने स्थिति में
उदय, वहाँ से उदीर्णा होकर जो परमाणु उदय में आते हैं, तो इतनी सारे स्थितियों के में से उदय होता है, ऐसी भी एक अपेक्षा उन्होंने ली थी। पहले एक बार ये विषय आ चुका है, हम तो कहते थे वर्तमान एक स्थिति का उदय है, परंतु उस वर्तमान स्थिति में कहाँ कहाँ से परमाणु उदीरित होकर आए हैं, उन सभीों का सभी उसकी हम कहेंगे उसका उदय चल रहा है। यानी उदीर्णा की अपेक्षा उदय वहाँ घटित हो सकता है। प्रदेश उदय तो बढ़ता ही चला जाएगा असंख्यात गुणा, क्यों वो तो गुण श्रेणी रूप से रचना हुई है, और वो एक एक निशे के नीचे आएगा तो असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा प्रदेश उदीर्णा होगी, उदय होगा प्रदेश का उदय। तो इसलिए उसका विस्तार नहीं किया। अब आगे पढ़ेंगे नीचे से दूसरी लाइन 22 पेज पर। इस प्रकार सर्वप्रथम स्वस्थान में इनकी मार्गणा करके, अब सूत्र में निर्दिष्ट किए गए इन्हीं सब पदों का परस्थान में अल्पभूतव कथन करते हुए चुन्नी सूत्रकार इस सूत्र को कहते हैं। परस्थान में उसका अल्प बहुत बताएंगे। कहते हैं नऊ से वेदस परम समय उमगस जाओ ठिदियो बज्जंती ताओ थोवाओ। नपुसक वेद का प्रथम समय में उपशम करने वाले के जो स्थितियां बनती है वे थोड़ी हैं। यानी वहां जितना स्थिति बंद है उसकी बात चल रही है।
यहाँ पे अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय ही नहीं लिया। अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय में जो लोग बनता है वो 15 दिन का बनता है,
ऐसा यहाँ नहीं,
1 मास का बनता है।
ये अल्प वो तो किस में चल रहा है?
स्थिति की अपेक्षा, जो बंधक की अपेक्षा।
कौन से कर्म की?
मोहनीय की।
देखो यहाँ जो बन रहा है मोहनीय का कितना वर्ष प्रमाण स्थिति बंद है उसकी कंपैरिजन किसके साथ चल रही है?
अच्छा दूसरे अगाती कर्म और
नहीं। देखो नपुसक वेद के प्रथम समय में यहाँ बंधने वाला मोहनी कितना है, यानी उसका स्थिति बंध कितना है, उसके साथ कंपेयर करेंगे कितनी स्थितियाँ संक्रमित होती है, उसके साथ कंपेयर करेंगे कितनी स्थितियाँ उदीरित होती है, उसके आगे कहेंगे कितनी स्थितियों का उदय चल रहा है। ये परस्थान अल्पबोध। पहले तो हर एक की अपनी अपनी बात बताई है। पहले क्या बताया था? उपशम की बात पहले की। तो कहते पहले समय में जितना प्रदेश उपशमित होता है दूसरे असंख्यात गुना, तीसरे असंख्यात गुना, चौथे असंख्यात गुना। नपुसक वेद अनुदय वाली थी तो स्थितियां तो समान, उसके उतनी अवस्थित स्थितियों का उपशम चल रहा था। और संक्रमण कितने का हो रहा था?
संक्रमण भी अवस्थित हो,
वैसे हर एक में लगा लेना। यानी प्रदेश की बात की, स्थिति की, अनुभाग की भी बात की थी। अनुभाग भी सर्वत्र अवस्थित
है।
अब यहाँ पर वहां तो संक्रमण में अपना अपना अल्पभूत बताया था, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, वो बढ़ता हुआ है कि अवस्थित है कि कम हो रहा है। तो संक्रमण में स्वस्थान अल्पभूत बताया था, उपशम में अपना अपना अल्पभूत कहा था। अब यहाँ उपशम, संक्रमण, उदीर्णा, इनका आपस में अल्प बहुत बताया। ख्याल में है ना अल्प बहुत किसका चल रहा है? तो यहाँ कह रहे हैं नपुसक ऊपर, वो ऊपर पढ़ा था हमने, नपुसक वेद का प्रथम समय में उपशम करने वाले के ये जीव बताया कौन सा है और उसका स्थान बताया कहाँ की बात चल रही है। अंतर होने के, अंतर करने के इमीडिएट नेक्स्ट समय में नपुसक वेद की उपशमना शुरू हो जाती है, तो उसका नपुसक वेद का उपशम करने का पहला समय है। उस समय में यानी उस वह जो जीव है नपुसक वेद का प्रथम समय में उपशम करने वाला जीव, उसके जो स्थितियां बनती है वे थोड़ी, वहां स्थिति बंद कितना हो रहा है वो थोड़ा है, स्थितियों में कंपैरिजन चल रही है। देखो मोहनी की कितनी स्थिति बनती है इस पोजीशन पर, वो स्थितियां कम है। इसके कंपैरिजन जब हम आगे सेकंड पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा खुलासा होगा, क्योंकि किससे कम कह रहे हैं, कितनी स्थितियां उपशमित होती है, कितनी स्थितियां बनती है, कितनी स्थितियों का उदय होता है, कितनी स्थितियों का संक्रमण होता है, इसमें अल्पबोधत्व चल रहा है। तो पहला में पहले कौन सा जीव लिया? अंतर करण समाप्त हुआ है और नपुसक वेद का उपशम करने का पहला समय है, उस समय मोहनी की कितनी स्थितियां बनती है? तो कहते वो थोड़ी है सबसे। करने वाले के नहीं, उस जीव के जो स्थितियां बनती है, मोहनी की ही चल रही है यहाँ पर, क्योंकि कितनी बनती है तो यहाँ तो संख्यात हजार वर्ष, संख्यात वर्ष प्रमाण बंद है। यहाँ पर इस पोजीशन पर संख्यात वर्ष प्रमाण बंद है। तो हम नीचे पढ़ेंगे, देखो अंतरकरण क्रिया समाप्त होने पर नपुसक वेद का प्रथम समयवर्ती उपशामक होता है, उसके उस समय मोहनी की जो स्थितियां बनती है, लिखा है ना, ये जीव कौन से स्थान पर कितना बंद कर रहा है उसकी बात को, वे स्तोक है यानी सबसे अल्प है, क्योंकि अंतरकरण क्रिया करने के अनंतर ही मोनिय का संख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबंध देखा जाता है। अब इसकी कंपैरिजन आगे बढ़ेंगे हम तो किसके साथ कर रहे हैं वो ख्याल में आएगा। जाओ शंका मिज्जंती ताओ असंख्य गुणाओ, क्योंकि बंध तो बहुत कम है तो नया बंध संख्यात वर्ष प्रमाण है, परंतु यहाँ मोहिनी की स्थिति कितनी पड़ी है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर पड़ी है, जो स्थितियाँ तो उसमें से संक्रमण चलेगा। एक उदयावली को, उदयावली तो इसकी नपुंसक वेद में तो अन्य प्रकृतियों की उदयावली, यहाँ किसी विशिष्ट प्रकृति की बात नहीं चल रही, मोहिनी कर्म की बात चल रही। तो जिसका उदय है उसकी उदयावली छोड़ो या जिसका उदय नहीं उसकी द्वितीय स्थिति ले लो, फिर भी वो कितना है तो अंत कोड़ा कोड़ी, उतने में से संक्रमण होगा, उतने निषेकों में से संक्रमण होगा, सभी निषेकों में से होता है। तो कहते हैं जो स्थितियां संक्रमित की जाती है वे असंख्यात गुणी है,
बंद
से। अभी कहां हमने पढ़ा है, अभी हमने इतना ही पढ़ा है नपुसक वेद का उपशम करने वाले के प्रथम समय में मोहिनी की स्थितियां जो बनती है वो सबसे अल्प है, ये पहला अल्प बहुत हुआ, अभी हमने आगे नहीं पढ़ा, ये दूसरे पर आ गए हम, अल्प बहुतों का दूसरा नंबर कि इससे संक्रमित होने वाली जो मोहिनी की स्थितियां है वो असंख्यात गुणी है इसका, क्योंकि वे अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण है। समझ में ना, एक उदयावली को छोड़ो बाकी सत्ता में जितनी स्थितियां हैं उन सभी में से संक्रमण चलेगा, नहीं समझे, ख्याल में आई बात। ये संक्रमण सभी में से चले ना, द्वितीय स्थिति तो सभी पड़ी है, प्रथम स्थिति जो उदय रूप वाले वो प्रथम है नहीं है तो उसको गौण भी करेंगे तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तो पूरी द्वितीय स्थिति पड़ी है और उस सभी में से संक्रमण चल रहा है मोहनीय का। सभी प्रकृतियों में अपना अपना जो कुछ अनुपूर्वी रूप से संक्रमण चल रहा है, ऐसा नहीं कि उपशम करने का कार्य आएगा, काम समय आएगा तो ही संक्रमण शुरू होगा, ऐसा नहीं, संक्रमण तो सभी में चल रहा था। शंका हाँ, अभी जितने में से उपशम रहा है उसमें से संक्रमण भी हो रहा है, अभी नपुंसक वेद का उपशम भी चल रहा है, यहाँ पर मात्र एक का ही चल रहा है और संक्रमण भी यथायोग्य सभी प्रकृतियों में चल रहा है। तो शंका, यहाँ पर उपशमाई जाने वाली स्थितियों का निर्देश क्यों नहीं किया, उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि संक्रमित की जाने वाली स्थितियों में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए उनका अलग से निर्देश नहीं किया, और जो कुछ उनमें भीतरी सूक्ष्म भेद है वह भी व्याख्यान से जान लिया जाता है, क्योंकि व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है, ऐसा न्याय है। सूत्र में तो सभी बातें नहीं बताई जाती हैं, व्याख्यान करने से उसके अधिक उसका ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य है प्रथम स्थितिगत स्थितियों की उपशमना नहीं होती, संक्रम होता है बाद में, प्रथम स्थिति में जो है जिसका उदय वो प्रथम स्थिति में है, अब कहते हैं उनका तो उपशम नहीं होता है परंतु वहां संक्रम तो उसका भी होता है, एक आवली छोड़कर
उपशम नहीं होता है ना प्रथम स्थिति का,
वहां उपशम नहीं होता है, मैंने होता है कहां के नहीं होता है, उपशम नहीं होता है, संक्रम होता है किसमें, हाँ संक्रमण तो सभी से हो रहा है ना, अनुपूर्वी संक्रमण भी चल रहा है यहाँ पर,
प्रथम स्थिति का संक्रमण हो रहा है, प्रथम जो प्रथम स्थिति
आवली का नहीं होगा, उदयावली को छोड़कर ऊपर सर्वत्र का संक्रमण
होगा,
ये तो हमने पहले भी देखा था, मात्र संक्रमण के जब हमने विषय का अभ्यास किया था तो उदयावली को छोड़कर
सभी
ऊपर के उसमें से संक्रमण होता है, यहाँ तो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, वहाँ संक्रमण में तो बहुत उसमें स्थितियों का संक्रमण, अनुभव का संक्रमण ऐसे अलग अलग अपेक्षा ली थी। अब सबकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अब कहते जाओ उदीरित जंती ताओ तत्तियाओ चेव। जो स्थितियां उदीरित की जाती है वे उतनी ही है। क्योंकि उदयावली के बाहर की समस्त स्थितियां उदीरित की जाती है, इसलिए वे संक्रमित की जाने वाली स्थितियों के बराबर देखी जाती है। पहले जो हमने देखा था उदीर्णा वाली विशेषहीन होती है, वो तो एक समय से दूसरे समय के साथ कंपेयर किया था तभी बताई थी। अब यहाँ एक ही समय में उदीरित कितनी स्थितियां होती, कितनी स्थितियों में से उदीर्णा होती है और कितने स्थितियों में से संक्रमण होता है, तो कहते उदयावली को छोड़ो, ऊपर वो प्रथम स्थिति में हो या द्वितीय स्थिति में हो, सबका संक्रमण भी होता है, सबकी उदीर्णा भी होती है, यानी वो सेम है, उतनी है। तो दूसरे नंबर पर हमने स्थितियां संक्रमित होती उसको असंख्यात गुणा कहा था। तीसरे समय में जो उदीरित होती वो उतने ही है, यानी दो और तीन समान है। अब आगे लास्ट वाला सूत्र, उदीर्णाओ विशेषायाओ। उदीर्ण स्थितियां विशेष अधिक हैं। उदीर्ण का अर्थ क्या है? उदय होने वाली, उदीर्णा होने वाली नहीं। उदीरित अलग बात है और उदीर्णा अलग बात है,
ये एक विशेष से ज्यादा
होगी, विशेष अधिक। हाँ, यानी एक उदय रूप है और जहां जहां से उदीर्णा हो रही है उस सबको उसमें गिनना। तो कहते उदीर्ण स्थितियां विशेष अधिक है क्योंकि उदयावली का भी इनमें प्रवेश देखा जाता है।
तो पूरी आवली लिया उन्होंने,
उदयावली ने उदय ठीये भी, उदय स्थिति का भी इनमें प्रवेश चाहिए। ऊपर देखो, उदय ठीये भी एत्थ प्रवेश दंसना दो, पूरी आवली ने उसमें लेना, उदय स्थिति चाहिए उदयावली ने। ऊपर देखो प्राकृत में, किम कारणम उदय ठीये भी एत्थ प्रवेश दंसना दो, उदय स्थिति का भी चाहिए, उदयावली के बदले उदय स्थिति का। जो वर्तमान में उदय रूप है स्थिति, पहले मैंने बात की थी उदय कितनी स्थिति, स्थिति उदय में कितना लेना, एक उदय रूप स्थिति और जहां जहां से उदीर्णा होकर आई है, कहां कहां से, उदयावली के ऊपर के सर्वत्र से उदीर्णा हो रहा है। जैसे मान लेते उदयावली में चार समझेंगे और ऊपर सौ पड़े, इसको छोड़कर सौ पड़े, तो सौ में से तो उदीर्णा हो रहे नीचे, तो उदीर्णा होने वाले सौ है और उदय होने वाला 101 है, क्योंकि उदय रूप ही उसमें गिनना, इसलिए वहां उसको विशेष अधिक कहा, एक से ज्यादा है। एक है असंख्यात भाग कहेंगे हम, असंख्यात भाग अधिक है। जट ठिधि उदयो दीर्णा संत कम्मम च विशेषायो। अच्छा लगता है। अब कहते यस स्थिति उदय उदीर्णा और सत्कर्म विशेष अधिक है। देखो ये यत स्थिति किसको कहना, इसको हमने कहा ना अभी, अभी जो उदाहरण दिया था, नीचे चार समय ले लो उदयावली के और ऊपर सौ समय है उसमें से उदीर्णा हो रही है, तो वो सौ समय उनकी यत स्थिति कितनी होगी?
तीन समय से ज्यादा होगी। तीन समय वाली ज्यादा है,
यानी उनकी पोजीशन कितनी है वो ले लेना। नीचे उदयावली को छोड़ा था और ऊपर को गिना था, पर समयों की अपेक्षा अगर उनकी बात करेंगे तो वो कहाँ पर स्थित है, उनके समय की अपेक्षा बात करेंगे
तीन समय ज्यादा
तो वो तो, और वो चार एक उदय वाला छोड़ो तो उसके ऊपर उसमें ले लेना सब। प्रथम समय से लेकर उनकी पोजीशन क्या है वो रीजन। अभी हमने लेंगे ना चार समय तो उदयावली में
वहाँ पे
और ऊपर सौ समय है,
एक सौ एक लिया
तो सवा जो है सवा नंबर का तो उसकी यश स्थिति कितनी है? हाँ तो 104 होगी ना।
हाँ 104 तो तीन सौ भी ज्यादा हो गया ना,
एक सम कमय उदय उदयावली का इसमें प्रवेश हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा आपको। यश स्थिति किसको कहना वो बात है। एक तो होती है कि जहाँ पर जो स्थित है, जैसे हमने मान लेते चार समय हमने उदयावली के समझे और ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः छठवें नंबर पर है, तो उदयावली को छोड़कर इसको हम छठा नंबर देते हैं, पर वर्तमान समय से इसको गिनो तो दसवां नंबर आए।
और आगे हमने सात देखा था।
तो देखो यह स्थिति उदय उदीर्णा और सत्कर्म विशेष अधिक है, उसको यह स्थिति कहना। यह स्थिति ने जो जिसका समय उनकी अपेक्षा जिसकी स्थिति जितनी पड़ी है वो यह स्थिति होती है। उदयावली के ऊपर कितने तो उसकी संख्या हमने बताई, परंतु उसको समयों में गिनकर बताओ तो उसकी स्थिति कितनी है तो उसको उसमें जोड़ देंगे। क्योंकि एक समय कम उदयावली का इनमें प्रवेश देखा जाता है, यह स्थिति संक्रम भी इनमें अंतर्भूत है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति उदीर्णा के समान उसका प्ररूपण है। उदीर्णा में वो एक समय छोड़ देना, इसलिए केवल वो वर्तमान एक समय में उसको प्रवेश दे, यानी उदयावली के बाकी निषेक उसमें ले लेना। ये उदय के लिए, यह स्थिति उदय के लिए वर्तमान एक निषेक छोड़कर बाकी सबकी टोकरी, यह स्थिति उदय के लिए।
यहाँ पे कितना कम है, एक समय कम उदय आवली
उदय के लिए हमने कितने गिने थे, एक सौ एक गिने थे।
हाँ, और तीन और एक करना है,
अभी यह स्थिति करने के लिए तीन मिलाना।
यह
स्थिति उदय के लिए उदय का समय हमने ऑलरेडी उसमें पकड़ा है, पहले ऊपर के सौ पकड़े थे और उदय का एक समय पकड़ के हमने 101 कहा था। अब यह स्थिति ने उस समय निषेक कितने है टोटल
104
तो उसमें और तीन मिला था ना जो पहले हमने छोड़े थे।
हाँ उदयावली में एक समय कम इतना मिला,
उसमें मिला दो और नहीं समझे। पहले हमने उदयावली के चार समय लेके और ऊपर सौ समय लिए थे, अब यहाँ यह स्थिति उदय की बात कर रही है। पहले उदीर्णा कितने में से हो रही तो सौ में से हो रही थी, उदय कितने में से हो रहा है तो 101 में से हो रहा था। अब यह स्थिति उदय तो उसमें वो जो तीन हमने छोड़े थे उसको भी मिला देना, तो यह स्थिति उदय 104 का है। उदयावली में से एक समय माइनस इसलिए किया कि हमने उदय का समय पहले ही पकड़ा था। हाँ हमने उसको चार समय मिला तो हमने तीन मिलाए थे, 101 ऑलरेडी पकड़े थे उसमें और तीन मिलाए तो 104 हो गए। उदीर्णा में तो केवल हमने सौ लिए थे तो उदीर्णा के समय वो पूरे ही उसमें मिलाने पड़ेंगे। यह स्थिति कितनी है तो उसको 104 कहेंगे। तो संक्रम और उदीर्णा के लिए समान कहना। तीसरी राय, यहाँ मोहनी के चार संज्वलन और पुरुष वेद का यह अल्प बहुत्व जानना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा, नपुसक वेद में क्यों नहीं घटित होगा ये? नितिन भाई हाँ हाँ यह स्थिति की बात नहीं है, पांच हमने देखे यहाँ, कौन से पांच देखे? अल्प बहुत वो पांच किसके किसके देखे? नहीं, अल्प बहुत्व में हमने पांच पदों पर अल्प बहुत्व लगाया, पांच कौन यहाँ लिखा ना परस्थान अल्प बहुत्व कहेंगे तो पहले में पहले बंध लिया, स्थिति बंध लिया। हाँ दूसरे दूसरे में संक्रमण लिया, तीसरे में उदीर्णा भी उतने में से ही होती है ऐसा कहा, चौथे में उदीर्णा ने उदय लिया और पांचवे में यथस्थिति उदय उदीर्णा संक्रमण लिया। बोलो अभी पांच कौन से पद लिए? मोहनीय का बंधन स्थिति बंद है, बंधने वाली स्थितियां कितनी है तो सबसे थोड़ी है। दूसरे पॉइंट पर संक्रमण कितना है, तीसरे में उदीर्णा कितने में से होती है, स्थिति की बात चल रही है वहां पर, स्थिति की ही ली सर्वत्र। चौथे में उदीर्णा है उदय कितना, और पांचवे में यह स्थिति, सब में लगाएं, उदय में भी उदीर्णा में भी संक्रमण में। ये अल्प बहुत हमने उदीर्णा यानी उदय रूप हमने देखे ना, कर्णोपशामना में अनुदीर्ण कर्णोपशामना, अनुदीर्ण है ना, अनुदीर्ण उपशामना, कर्ण अनुदीर्ण उपशामना नाम दिया था। उदीर्ण का अर्थ उदय होना,
कितनी स्थिति में
उदीर्णा अलग है ना, उदीर्ण अलग है, वो उदीर्णा एक शब्द अलग है और उदीर्ण, हाँ यहाँ उदय उदीर्णा और सत्कर्म लिखा है। यह स्थिति उदय में कितना अधिक लिया तो एक समय कम आवली लिया थी, यह स्थिति उदीर्णा में एक आवली ज्यादा लेनी पड़ेगी, यह स्थिति सत्कर्म में भी वो तो आवली अधिक लेनी पड़ेगी, संक्रमण में भी। सत्कर्म में तो वो पूरा यह स्थिति सत्कर्म में अंतर को भी गिनना पड़ेगा है ना, अंतर को जो गिनना है, क्योंकि उसके भी समय तो है ना वहाँ पर, उसको भी गिनना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं कहा है शायद उन्होंने। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ये जो अल्पभूत को बताया बंध का, बंध का पहले नाम लिया ना, तो किसका किसका बंध हो रहा है, मोहनीय का, हाँ नवे गुणस्थान में मोहनी में कौन कौन बंध रहे हैं, अभी शाम को कौन आ रहे हैं वो बताना चाहिए सर। हाँ पुरुष वेद और चार संयोलन, तो यहाँ क्या लिखा, यहाँ मोहनी के चार संयोलन और पुरुष वेद का यह अल्पभूतव जानना चाहिए,
बाकी में तो बंदर रोग है ही नहीं।
समझ में आई ना बात, यहाँ इसको ही क्यों लिया, नपुसक वेद में बंध नहीं है, बंध नहीं है, और उसका अगर उदय नहीं तो उसकी उदयना भी नहीं कहेंगे, तो यह अल्पभूतव किस में हो रहा है। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम गोत्र वेदनी और अंतराय का भी इसी प्रकार अल्पभूतव करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है, इतनी विशेषता है कि वेदनीय कर्म की प्रकृति में उदीर्णा नहीं होती। क्यों नहीं होती मेरा सवाल है, अश्विन भाई नहीं बोलेंगे, नितिन भाई को पूछने के कोई अर्थ नहीं है, बहुत अच्छा, छठे गुणस्थान में वेदनीय कर्म के उदीर्णा की विच्छित्ति हो गई, उसके हुए आगे तो उदीर्णा होती ही नहीं है, परंतु ज्ञानावरण दर्शना नाम गोत्र अंतराय की होगी
उदीर्णा होगी।
तो वेदनीय कर्म की प्रकृति में उदीर्णा नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वेदनीय के उदीर्णा की विच्छित्ति छठवे में हुई है। जैसे हमने बंध उदय की विच्छित्ति देखी ना, जैसे उदीर्णा की विच्छित्ति, स्त्री वेद और नपुसक वेद के बंध को छोड़कर संक्रम उदीर्णा उदय और सत्कर्म संबंधी स्थितियों को ग्रहण कर इसी प्रकार कथन करना चाहिए। वो भी कब कहेंगे, जब उसका अपना उदय सही श्रेणी चढ़े तो उदय उदीर्णा की बात करेंगे, तो उसमें भी अल्पभूतव लगाना है, तो उसमें तो बंध तो है ही नहीं है, उसका उदय होवे नहीं होवे, नपुसक वेद श्री वेद का तो बंध यहाँ पर है ही नहीं, पुरुष वेद का बंध है, तो उसमें अल्पभूतव लगाना है, तो किसमें किसमें लगाएंगे, तो बंध को छोड़ा कौन रहेगा, संक्रम उदीर्णा, जितने स्थितियों में से संक्रम है उतने में से उदीर्णा है, उदय, उदय में एक निषेक और जोड़ देना, जितने में से उदीर्णा होती उसमें और एक निषेक जोड़ना तो उदय वाली स्थितियां बनेगी। और सत्कर्म संबंधी स्थितियों को ग्रहण कर, सत्कर्म में स्थितियां किसको लेना, यदि उदय रूप है तो प्रथम स्थिति में कितनी, द्वितीय स्थिति में कितनी, और यह स्थिति में उसको अंतर सहित सबको ले लेना, क्योंकि उदय सहित अवस्था की विवक्षा में उक्त अल्प बहुत्व बन जाता है, ये बन जाता है, जन बन जाता है। ख्याल में ना, यदि उदय नहीं हो तो क्या घटित होगा,
बंद भी घटित,
उदय नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी, बंद तो है ही नहीं है, संक्रम होगा,
संक्रमण होगा
उसका, और सत्व होगा, बाकी अल्प हो तो किसके साथ करेंगे उसका। आठ कषाय और छह नौ कषायों का अल्प बहुत्व नहीं है। अब इनका अल्प बहुत्व क्यों नहीं है, कोई कहेगा, नितिन भाई आप बताएंगे, ट्राई करना जरा। क्या हुआ, यहाँ उदय भी नहीं है, बंद भी नहीं है, कारण क्या है, नपुसक वेद का तो उदय तो था, बंद नहीं था, परंतु उदय था इसलिए उसके उदीर्णा भी और उदय भी था, संक्रमण तो सब में हो रहा है, तो उसका उदय उदीर्णा भी नहीं है, तो यहाँ अल्प वो तो किसके साथ करेंगे, ना बंद है, ना उदय है, ना उदीर्णा है, बस एक संक्रमण है, तो एक एक में तो कुछ अल्पभूतो नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्रकृतियों का वहाँ बंधर उदय आदि पद संभव नहीं है, उदय नहीं है तो उदीर्णा भी नहीं होगी। इस प्रकार स्थितियों का आश्रय लेकर ये जो हमने अल्पभूतव देखा है, बंध में बंधने वाली स्थितियाँ, संक्रमित होने वाली स्थितियाँ, उदीरित होने वाली स्थितियाँ, उदय रूप होने वाली स्थितियाँ और यह स्थिति, ये सब स्थितियों की अपेक्षा अल्प बहुत्व बताए, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं। तो इस प्रकार स्थितियों का आश्रय लेकर प्रकृत अल्प बहुत्व को समाप्त करके अब अनुभाग विषयक प्रकृत अल्प बहुत्व की मार्गणा करने के लिए अल्प बहुत्व बहुत्व हुआ है आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। अभी अनुभाग संबंधी अल्प बहुत्व कहेंगे, ये ख्याल में ना, स्थिति की बात आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं समझे तो पूछना, हम दोबारा पढ़ेंगे सब, आगे बढ़ने की कोई घाई नहीं अपने को। अनुभागे न बंधो थोवो, अभी अनुभाग की भी बंध की बात कर रहे हैं, सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग अलग है और बंद। यहाँ बंधने वाला अलग है, तो यहाँ तो इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, तो यहाँ जो जिस किसी का बंद हो रहा है उसका अनुभाग अत्यंत मंद हो रहा है, जिस किसी ने, अभी तो हम मोहनी की बात कर रहे हैं, तो क्या बाकी कर्मों में भी ऐसा ही होगा कि अनुभाग अत्यंत कम बंधेगा, क्यों, कि ज्ञानावरण में क्या होगा, दर्शनावरण में क्या होगा, अंतराय में क्या होगा, अनुभाग बंध कम बंधेगा कि ज्यादा बंधेगा, ज्यादा बंधेगा। हाँ हाँ, आपने नाम लिया, और यहाँ पर प्रशस्त बनती है तो अरे वो तो चतुस्थान वाली, वो अनंत गुना बढ़कर बंधेगा, कोई है कि यहाँ प्रशस्त बनने वाली, हाँ बहुत अच्छा, यशस्वी की रूप से बोल रहा, ये नौवा गुणस्थान चल रहा है ना, बाकी तो आठवें में बहुत सारी तो विच्छित हो गई है, साता वेदनीय है, अभी तो अनुभाग बन रहा है उसका, ऊपर जाके नहीं बंधेगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुभाग की अपेक्षा बंधस्थ हो के, क्योंकि यहाँ तो अनुभाग ही लेना है, अभी स्थिति कितनी बनती उसकी बात नहीं है, क्योंकि वह देशघाती एक स्थानीय रूप स्वरूप है, ये स्थानीय शब्द आया ना, देशघाती एक स्थानीय स्वरूप है। मोने की बात चल रही नहीं यहाँ पर, देशघाती और एक स्थानीय बंद होता है यहाँ पर, इसलिए इसके सबसे स्तोक पने की सिद्धि करके अब इससे आगे बहुविषयक अल्पभूतव का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बहुविषयक यानी इससे अधिक क्या होगा, उससे अधिक क्या होगा, तो यहाँ तो बंद, उदय, उदीर्ण, संक्रमण, इसमें वो अल्पभूतव चल रहा है अनुभाग संबंध। तो आगे कहते उदयो उदीर्णाच अनंत गुणा, उदय और उदीर्ण अनंत गुण है, क्योंकि ये बंद तो अभी अभी बंद रहा है और उदय उदीर्ण तो पूर्व में बंदे हुए की बात चल रही है, उसमें से अनुभाग की उदय उदीर्ण होगी। क्योंकि देशघाती एक स्थानीय पने की अपेक्षा विशेषता न होने पर भी प्रेरणा बिन, इसका अर्थ क्या है? विशेषता न होने पर भी नहीं है डिफरेंस, यानी ये भी उदय भी एक स्थानीय है, देशघाती रूप है, बंद भी देशघाती और एक स्थानीय है, फिर भी बंद से वो उदय है वो अनंत गुणा है, क्योंकि जो उदय है वो तो पुराने कर्मों का है, वो अनंत गुणा हीन होकर उदय में आ रहा है, फिर भी नए बनने वाले की अपेक्षा अगर उसकी बात करेंगे तो अनंत गुणा है अभी वर्तमान में, वर्तमान में बनने वाले की अपेक्षा वर्तमान में जो उदय चल रहा है, तो ये उदय किसका चल रहा है? जो पुराना जो बंद था उसका चल रहा है, और जो अभी जो बंधेगा वो अनंत गुणाहीन होगा, दोनों ही लता रूप है, फिर भी बंद से जो उदय हो रहा है वो अनंत गुणा है। तो कहते क्योंकि देशघाती एक स्थानीय पने की अपेक्षा विशेषता न होने पर, यानी वो उदय भी द्वेषघाती और एक स्थानीय है, फिर भी विशेषता नहीं होने पर भी लगाए ना अनुभाग की, कितने स्पर्धक है, कितने स्पर्धक रूप से बंद हो रहा है और कितने स्पर्धक में से जो अनंत गुणा कहते तो उसमें तो मैक्सिमम अनुभाग कितना है? चिरकालीन सत्कर्म स्वरूप, चिरकालीन ने पुराना बंधा हुआ, सत्कर्म ने सत्ता में पड़ा हुआ, उदय और उदीर्णा का अनुभव उस रूप पाया जाता है, उस रूप में अनंत गुणा पाया जाता है। यहाँ के बंधने वाले से यहाँ जिसका जो पुराने का जो उदय चल रहा है वो अनंत गुणा होकर उदय चल रहा है। संकमो संतकम्मम च अनंत गुणम, संक्रम और सत्कर्म अनंत गुणे हैं। हाँ, संक्रम वो पहले जैसा उनको नीचे क्रो किया है उन्होंने, हम अलग रीति से लिखते हैं, उन्होंने वो राष्ट्र जैसा चक्र किया। हाँ, ये लिखना ना, ये हम क्रम कैसे लिखते हैं वैसा चाहिए, आश्र उश्र कैसा लिखते हैं ऐसा एक बाजू उसको निकाला है। देखो संक्रम और सत्कर्म अनंत गुणा है, अभी इसका अर्थ करेंगे। क्योंकि इनका अनुभाग सर्वघाती द्विस्थानीय स्वरूप है, सत्ता में जो पड़ा है जो मैक्सिमम रूप से है वो सर्वघाती द्विस्थानीय है और उसमें से संक्रम भी होगा, इस प्रकार यह अल्प बहुत्व अंतरकरण से लेकर अनिवृत्ति बादर सांप्राय को लक्ष्य में रखकर कहा है
कि जो पहले जो अनुभव सांडक हुए थे वहाँ पे एक स्थानीय नहीं हुआ था ना,
नहीं नहीं सत्ता वाला द्विस्थानीय ही रहा था ना अभी,
अनुभव कांडक जो पहले हुआ था वहाँ पे वो अनुभव एक स्थानीय नहीं हुआ था ना,
उदय में एक स्थानीय है, बंध में एक स्थानीय है, सप्ताह में बता रहे ना यहाँ क्या लिखा है
द्विस्थानीय,
अभी हमें पहला देखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ बता रहे ना अब संकमो संतकम्मम च अनंत गुणम, उससे अनंत गुणा है और वो सर्वघाती द्विस्थानीय सर्वत्ता दो, इनका अनुभाग सर्वघाती द्विस्थानीय स्वरूप है। इस प्रकार यह अल्पभूतव अंतरकरण से लेकर अनुवृत्ति बादर सांप्राय को लक्ष्य में रखकर कहा है। ये जो यहाँ अनुभव ये सब बात बताई है, अंतरकरण हुआ और जो रिमेनिंग काल है अनिवृत्तिकरण का, वहां तक ये अल्पभूतव लागू होगा। अब इसके संबंध से कृष्टि वेदक यानी कृष्टि का वेदन यानी उदय भोगने करने वाला। तो कृष्टि का उदय कब होता है? तो दसवें गुणस्थान में होता है। कृष्टि कहना किसको? अभी तक तो हम स्पर्धक और वर्गणा कहते थे, अब इसका अनुभाग इतना हीन होता है, अनंत गुणाहीन कि तो उनको भी वर्गणा नहीं कहेंगे, उसको कृष्टि कहेंगे। तो कृष्टि करने का कार्य तो नवे गुणस्थान के अंत की ओर हुआ और दसवें में कृष्टि का वेदन, क्योंकि वहां सूक्ष्म लोग है ना, लोग की कृष्टि की यानी लोग को सूक्ष्म कर दिया। तो ये कृष्टि वेदक कौन सा गुणस्थान है? तो सूक्ष्म सांप्राय के किस प्रकार का अनुभाग संबंधी अल्पभूतव होता है, ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। तो किट्टियो वेदेंतस्य बंधो नत्थी, ये तो बहुत जिसको कहने महत्वपूर्ण क्या सिद्धांत है, पृष्टियों का वेदन करने वाले के बंध नहीं होता। कौन सा? उसका अपना मोनिय का, मोनिय के बंध की बात। वही तो, यानी दसवें गुणस्थान वाले के मोनी का बंधन नहीं है। हाँ, बाकी अज्ञानावरण वगैरह तो चल रहा है। जब तक बादर लोभ था तब तक उस रूप से उसका बंध भी था। यहाँ कह रहे क्योंकि अनिवृत्ति गुणस्थान के बाद मोनी का बंध नहीं होता, इसलिए बंध को छोड़कर शेष पदों का ही अल्पभूतव करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ कृष्टि वेदक के अल्पभूतव की बात आई तो पहले कहा यहाँ बंध ही नहीं होता मोने का, अभी उसको से निकाल कर बाकी में उसका अल्पभूतव लगाएंगे। तो अभी स्तोक पे नंबर किसका आएगा? तो कहते उदय उदीर्णाचत हुआ। उदय और उदीर्णा सबसे स्तोक है। क्योंकि अनंत गुणहानि रूप से घटाकर कृष्टियों का उदय और उदीर्णा रूप से परिणमन देखा जाता है। तात्पर्य है जिन कृष्टियों का प्रत्येक समय में उदय और उदीर्णा होती है वे उसी रूप से उदय और उदीर्णा को नहीं प्राप्त होती, किंतु ये अनुभाग की बात चल रही है, यहाँ स्थिति की बात नहीं हो रही है। जब दसवें गुणस्थान में जीव आता है और यहाँ अनुभाग का उदय चलता है तो कहते पहले समय में जैसे उसकी उदय उदीर्णा अनुभाग की हुई थी उसी रूप से दूसरे समय में नहीं होती, तो क्या होता है? अनंत गुणहानि रूप से घटकर ही वे उदय और उदीर्णा को प्राप्त होते हैं। यहाँ जो उदय उदीर्णा होगी वो अनंत गुणा घटकर होगी, भले वर्तमान निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कृष्टियाँ भी सभी होगी, फिर भी किस रूप से उदय चलेगा? तो पहले समय में जिस रूप था उसे अनंत गुणाहीन होकर दूसरे समय में उससे अनंत गुणाहीन, प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है, उदय की बात चल रही है। इसलिए यहाँ कुष्ठियों के उदय और उदीर्णा को सबसे स्तोक कहा है। आगे कहते संजमो अनंत गुणों, ऊपर संकमो कहा था यहाँ संजमो कहा है।
यह तो असंक्रामक है ना, संक्रामक तो नहीं है ना, हमने पहले ही देखा था लोक का असंक्रामक
अनुभाग का संक्रमण चल रहा है ना यहाँ पर। अपकर्षण होने को भी संक्रमण कहा था पहले, जब हम संक्रम की परिभाषा अपकर्षण होना उत्कर्षण होना यानी केवल पर प्रकृति को ही नहीं लिया है, ये संक्रम बराबर करना और ऊपर भी संकमो चाहिए, संयमो का अर्थ तो संयम होता है। 25 में पीछे क्या लिखा है, संकमो लिखा है, हाँ संकमो ही लिखा था ऊपर भी, ऊपर की जो पहली पहला जो सूत्र है 25 पेज पर, वहाँ भी संकमो कहा था, संकमो ही होना चाहिए। पेज 25 ना 16 नंबर पर, संकमो संत कम्म च अनंत गुणम, परिशिष्ट में लिखा है। संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सब कृष्टियों में से नीचे की और ऊपर की असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर मध्यम कृष्टियां वेदी जाती हैं, परंतु संक्रमित सभी कृष्टियां होती है, क्योंकि अपकर्षण संक्रम सभी कृष्टियों का होता है। अपकर्षण संक्रम का है ना, यहाँ पर प्रकृति रूप संक्रम नहीं लिया, अपकर्षण संक्रम, यानी यहाँ ये बात बता रही है कि वेदी ने उदय में आते हुए तो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आते हैं, परंतु जो संक्रमण है अनुभाग का घटना वो सभी सभी कृष्टियों में हो रहा है। कृष्टियाँ द्वितीय स्थिति में भी पड़ी है तो उनमें भी अनुभाग का घटना हो रहा है, तो इसका निषेध नहीं है। इसलिए उदय उदीर्णा से संक्रम अनंत गुणा हो जाता है, अनन्न हुआ है, अनंत गुणा हो जाता है। ऊपर लिखा था ना अपकर्षण, वो श के ऊपर का रफार बराबर नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि वेदी जाने वाली कृष्टियों की अग्र यानी उपरिम कृष्टि की अपेक्षा उससे अनंतर उपरिम नहीं वेदी जाने वाली जघन्य कृष्टि यदि एक भी ग्रहण की जाती है तो भी वह मध्यम कृष्टियों संबंधी पूरे अनुभाग से अनंत गुना ही होता है। तो क्या उन मध्यम कृष्टियों के उपरिम भाग में स्थित असंख्यात वे भाग प्रमाण सभी कृष्टियों के ग्रहण करने पर संक्रम अनंत गुणा नहीं होगा, नियम से अनंत गुणा ही होगा। अब यहाँ हम कृष्टियों की बात कर रहे हैं, कृष्टि अभी ये निषेक नहीं, अभी इसको कृष्टि समझना। पहले हम स्पर्धक वर्गणा की बात कर रहे थे, अभी यहाँ कृष्टि रूप से, यहाँ स्पर्धकों और वर्गणाओं को कृष्टि रूप से कर दिया है। ऊपर है उत्कृष्ट अनुभाग वाली कृष्टि, नीचे है जघन्य अनुभाग वाली कृष्टि, ऐसे सब निषेकों में ऐसा समझना। निषेक आड़े होते हैं उसमें जघन्य से उत्कृष्ट सभी कृष्टियां पाई जाएगी। तो कहते हैं कि ऊपर का असंख्यात भाग छोड़ दो, नीचे का असंख्यात भाग छोड़ दो, और ये मध्यम रूप से कृष्टियों का उदय चलेगा। पहले समय में इतना चलेगा। कृष्टिया कहते किसे, एक कृष्टि से उसकी एडजेसेंट कृष्टि देखने जाओ ऊपर की ओर तो अनंत गुना पाई जाती है। यहाँ तो कहते इतनी सारी मध्यम की सभी कृष्टियों का अनुभाग से भी ऊपर की एक कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है, तो इतनी सारी कृष्टियों का अनंत गुना नहीं होगा तो जरूर होगा। फिर दूसरे समय में क्या होगा, ये सारा नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ये उदय रूप में से ये उत्कृष्ट था उदय में होने वाले, अभी इसको छोड़कर ये नीचे वाला उदय रूप होगा यानी अनंत गुणाहीन होकर उदय में आएगा। तीसरे समय में और अनंत गुणाहीन होकर इसका उदय चलेगा और ये नीचे जघन्य की ओर बढ़ेगा, तो उसी को कहते हैं ये अनुभाग का अपकर्षण होकर उदय में आ रहा है, ये अपकर्षण होकर मध्यम रूप से उदय में आ रहा है, अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है, तो उसको अनुभाग का संक्रमण कहेंगे। उससे कहते संत कम्मम अनंत गुणम, उदय में किस रूप में, तो अनंत गुणाहीन होकर, सत्ता में अनंत गुणा रूप से पड़ा है, सत्कर्म अनंत गुणा है।
यहाँ पे जब सत्ता में तो द्वितीय स्थिति में जो
वहाँ तो स्पर्धक रूप भी पड़ा है,
पड़ा है।
सत्ता में जो है वो उपशमित भले पड़ा है, परंतु वो सत्ता में है ना, स्पर्धक रूप से उपशमित है, कृष्टियों को उपशमाने का कार्य चल रहा है और उदय भी कृष्टियों का चल रहा है, वो भी प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर 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 उदय में आ रहा है। सत्ता में कितना है तो अनंत गुणा है, स्पर्धक रूप से भी है। पूर्व सारा पुरातन चिरकालीन जो है
जो वो तो है ही वहाँ पर गया,
क्योंकि इसमें स्पर्धक रूप से स्थित पूरे अनुभव का ग्रहण किया है जो उपशमित होकर अभी पड़ा है। अभी उदय उसका घटकर हो रहा है, परंतु उपशमित अवस्था में पड़ा है वो। उदय कृष्टि का है, कृष्टियों में भी वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहे है।
संक्रमण अनंत
गुणा, उसी को अपकर्षण वाला संक्रमण कहा, अनुभाग का अपकर्षण रूप संक्रमण। इस प्रकार अनुभाग का अवलंबन लेकर प्रकृत अल्पभूतों की मार्गणा समाप्त हुई। अब प्रदेशों का अवलंबन लेकर उसका खुलासा करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। यहाँ पर स्थिति और अनुभाग को पहले लिया, अब प्रदेश को बता रहे। पहले हम उपशम संक्रमण उदीर्णा में पहले प्रदेशों की बात की थी, वहां पर यहाँ अल्पभूतों की बात चल रही। एतो पदेशेन नौ से वेदस्य पदेश उदीर्णा अणुकस्य अजहन्ना थोवा। अणुकस्य के अणुकस्य पीछे क्या लिखा है? अणुकस्य यानी अनुत्कृष्ट। एतो पदेशेन नंसे वेदस्य पदेश उदीर्णा अनुकस्य अजहन्ना थोवा। इससे आगे प्रदेश की अपेक्षा अल्पभूतव देखने पर एतो लिखा है ना, एतो पदेशेन यानी प्रदेश की अपेक्षा अल्पभूतव देखने पर नपुसक वेद की अनुत्कृष्ट अजघन्य प्रदेश उदीर्णा स्तोक। वो यहाँ सबसे कैसी है तो अनुत्कृष्ट है और अजघन्य है और वो सबसे कम है। प्रदेश कुंज की अपेक्षा अल्पभूतव देखने पर वहाँ सर्वप्रथम नपुसक वेद की अपेक्षा कहते हैं। अंतर किए जाने के दो समय से लेकर जिस किसी विपक्षित समय में विवक्षित चाहिए, विवक्षित है ना पर्टिकुलर। प्रदेश उदीर्णा असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण होकर स्तोक होती है, क्योंकि उदीर्णा वो सारे गुणश्रेणी रूप निषेकों में से हो रही है वहाँ पूछे और वो असंख्यात गुणा क्रम से होती रहती है, तो किसी एक समय में कितनी होती तो असंख्य समय प्रबद्ध प्रमाण होती है। टोटल उदीर्णा कितनी हुई असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण। शंका, क्या यह प्रदेश उदीर्णा जघन्य होती है या उत्कृष्ट? उसका समाधान, ऐसी पृच्छा होने पर कहते हैं यह अनुत्कृष्ट अजगन्य होती है, ऐसा सूत्र में कहा है। क्योंकि क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक द्रव्य विशेष की अपेक्षा न कर परिणामों के अधीन होकर प्रवृत्त होने वाली इसकी, यानी यहाँ वो जीव कितने सत्कर्म वाला है उसकी अपेक्षा नहीं है परिणामों के कारण, क्योंकि परिणामों के कारण गुणश्रेणी होती है और गुणश्रेणी में से इसके अपकर्षण होता है, तो परिणामों के अधीन होकर प्रवृत्त होने वाली इसकी त्रिकाल गोचर समस्त अनिवृत्तिकरण संबंधी परिणामों से विवक्षित एक समय में जघन्य उत्कृष्ट भाव के बिना एक रूप से प्रवृत्ति देखी जाती
है। आगे के पुस्तक में अंतर किए जाने के दो समय से लेकर
पहला समय छोड़ दिया। क्योंकि वो असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण जो हुई है, तो असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण उसका उदय शुरू हो जाएगा ना वहां पर। पहले समय में दिया गया, दूसरे समय में उदय होगा, उदीर्णा। अभी यहाँ देखते हैं क्या कहने का विशेषार्थ देख लेते हैं। जो गुणित कर्मांशिक जीव या क्षपित तो चाहिए क्षपिन नहीं क्षपित कर्मांशिक जीव, गुणित कर्मांशिक यानी जिसकी सत्ता में मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्म परमाणु है उसको गुणित कहते हैं। क्षपित यानी जिसने पहले विशिष्ट प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी क्षपणा की है, घट गया उसका, उसके कारण अलग है कि यहाँ तो इतना ही समझो। तो ऐसे दो प्रकार के जीव है, उनका अनुवृत्तिकरण में प्रवेश करते हैं। उनके अनिवृत्तिकरण का अर्थ है सबके समानता होती है परिणामों में। नपुसक वेद की प्रदेश उदीर्णा यहाँ विवक्षित नहीं है, अतः उनसे भिन्न जीवों के अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने पर वहां के परिणामों के अनुसार जो नपुसक वेद की अनुत्कृष्ट अजघन्य उदीर्णा होती है वह सबसे जघन्य रूप से यहाँ विवक्षित है। जो धन्य हुआ जघन्य रूप से यहाँ विवक्षित है। तीनों कालों संबंधी अनिवृत्तिकरण के परिणामों में से विवक्षित एक समय को लक्ष्य कर यह अनुत्कृष्ट अजघन्य उदीर्णा ली गई है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। वह भी अंतरकरण क्रिया संपन्न करने के अनंतर दूसरे समय की यह प्रदेश उदीर्णा है। अच्छा, अंतर करने के बाद दूसरा समय लिया है, इसका अर्थ नपुसक वेद की उपशम न करने का पहला समय जो पहले लिया था वही। अनंतर दूसरा समय, अनंतर अंतरकरण क्रिया संपन्न करने के अनंतर
उपशमक का तो पहला समय होता है ना,
उपशमक का पहला, इसका दूसरा लिया।
हाँ।
यह प्रदेश उदीर्ण है इतना विशेष जानना चाहिए। उसका एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने नहीं दिया है, शायद आपको वो प्रदेश विभक्ति को देखना पड़ेगा तभी बात ख्याल में आई जाएगा। आज तो यहीं रुकेंगे हम। पहले समय में नहीं लिया है, अच्छा पहले समय में जघन्य है।
ये अनुत्कृष्ट और अजघन्य क्यों लिया है?
सबसे जघन्य रूप, परंतु अनिवृत्तिकरण का प्रवेश करने का, यहाँ वो प्रवेश की बात नहीं, यहाँ तो अंतरकरण के बाद दूसरा समय लिया। आने पर अंतरकरण के बाद पहला समय नहीं लेते हुए दूसरा समय जो लिया है उसकी बात यहाँ चल रही थी। ठीक है, जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देखो
नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्रस्तावनम नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्रस्तावनम नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्रस्तावनम नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्रस्तावनम।